बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम शुरका को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे आज के सेशन का मौजू है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी शादियाँ। इस मौजू से मुतल्लिक हमें जो ऑडियंस की तरफ से सवालात मौजूद हुए हैं, हम आज इस सेशन में उनके जवाबात अल-मौरिख के स्कॉलर रफ़ी मुफ्ती साहब से हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो पहला सवाल है वो ये है कि नबी पाक की अज़दवाजी ज़िंदगी पर अक्सर ऐसे एतराज़ात उठाए जाते रहे हैं जिनकी वजह से एक मुसलमान उलझन में पड़ जाता है। हमें ज़्यादातर सवालात भी ऐसे ही मौसूल हुए हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने बोला कि नबी पाक की जो शादी हैं वो 11 से ज़्यादा थी, कोई किसी ने कहा कि 24 थी, कोई बोल रहा है 30 थी। इसके अलावा हमें एक वीडियो मौसूल हुई जिसमें एक हजरत फरमा रहे थे कि जो सूरत तहरीम की पहली आयात हैं उनका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हजरत हफ्सा ने नबी पाक को हजरत मरियम के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाते हुए देख लिया था और उस पर उनका नबी पाक से झगड़ा हुआ था, जिसको सुलझाने के लिए नबी पाक ने हजरत मारिया को खुद पर हराम करार दे दिया था। तो तब अल्लाह ताला की तरफ से ये आयात उतारी गई थी कि तुम अपनी बीवियों की दिलदारी में वो चीज़ क्यों खुद पर हराम करते हो जो तुम पर हलाल है। तो सर, इसकी वजाहत कर दीजिए और सर ये भी बता दीजिए कि ऐसे हालात में एक मोमिन को क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए।
आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ जो है ये बिल्कुल एक हकीकत की तरह जो है वो रोज़ रोशन की तरह वाज़े है कि आप किन अखलाक पर अपने ज़िंदगी बसर की। मसलन इसकी एक दलील जो है ना मैं आपको देता हूँ, वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों के माबैन दावा नबूवत किया, ज़ाहिर है वो दीन शिर्क पर खड़े थे और उन्होंने आपकी बहुत मुखालफत की। आपका दावा नबूवत जो था वो तौहीद की दावत के लिए था, यानी कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है ताकि मैं उसके पैगामात तुम तक पहुंचाऊं, यानी कि ऐ कुरैश के लोगों जो आपके बररास मुखातिब थे, और फिर सारी दुनिया तक आपका पैगाम पहुंचना था, यानी आप सारी दुनिया की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे। लेकिन जो पहले मुखातबीन थे जिनसे आपने डायरेक्ट बात की, उनके हाँ आपकी शख्सियत पर बहुत तनकीदें हुई। उन्होंने आपको शायर भी कहा, काहिन भी कहा, मजनू भी कहा, मुख्तलिफ एतबार से ना बहुत कंडेम किया कि आप ये तौहीद की बात छोड़ दें कि खुदा सिर्फ एक ही है। हमारे बुतों को भी आप मान लें कि ये भी खुदाई पहलू रखते हैं, खुदाई सिफात रखते हैं, इनको सजदा करना भी दुरुस्त है। यही था मौकफ मुशरिकीन का, और नबी का मौकफ था कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं। ये वो बड़ा बहुत बुनियादी अटैक था उनके उस अकीदे पर, अकीदे शिर्क पर। चुनाचे उन्होंने अपनी बहुत मुखालफत की। वो सारी मुखालफत जो है उसकी तफसील तो आप लोगों के इलम में होगी और बाकी पढ़ते रहते हैं लोग तो मालूम हो ही जाता है। लेकिन कभी उन्होंने नबी सन की अखलाकी जिंदगी और खासकर इस पहलू से आपकी अजवाजी जिंदगी, आपकी बीवियों के मामला, आपका रवैया, कभी कोई एतराज नहीं किया। बिल्कुल कोई एतराज नहीं आता कि आप कोई औरतों को बड़े यानी चाहने वाले थे और औरतों को बहुत, जैसे कहते हैं ना, एक वो जिन्स परस्त आदमी के जो मतलब है जिसको हर वक्त दिमाग पे औरत ही सवार रहती है, कतन नहीं, कतन बिल्कुल नहीं। आपने ये जरूर कहा है, ये हदीस में आता है कि मुझे दुनिया की तीन चीजें पसंद हैं, तो उनमें एक खुशबू, एक औरत और एक नमाज आपने कही। लेकिन वो इस हवाले से कहा कि वो जाहिर है कि वो जिस तरह से बयान है वो और जिस तरह उसको वाजे भी किया गया है, वो ये है कि औरत एक काबिले नफरत चीज नहीं है बल्कि एक दिल पसंद चीज है। दिल पसंद से मुराद एक हर मर्द के लिए जैसे दिल पसंद है और होनी चाहिए, अल्लाह ने एक कशिश और एक रखी है, तो उस हद तक तो बिल्कुल वाज़े मामला है और कुरान मजीद में इस वाले से अल्फाज आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कोई औरतों के पीछे पड़े हुए एक जिन्स परस्त शख्स थे। लेकिन बहरहाल जो गैर मुस्लिम है वो इस तरह के एतराजात करते हैं, उनके ये एतराज मुतअद्दिद पहलुओं से ना ये इस पर तनकीद की जा सकती है। पहली बात तो ये है कि उन्हें जब नबी सन के नबी होने पर ही शक है तो ये एतराज अखलाकी एतराज पर क्या हुआ, यानी कि वो तो कहती है ना कि नबी یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو آپ کے دعوی نبوت ہی کو جھٹلا رہے ہیں۔ جب دعوی نبوت کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ تو ان کی بنیاد ہی پر اعتراض ہو گیا نا۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ شادیاں کی، آپ نے کم شادیاں کی، آپ کا رجحان کیا تھا، آپ کا کیا نہیں تھا، یہ ایک بےمانی بات ہو جاتی ہے، بالکل بےمانی بات ہو جاتی ہے۔ ان سے اگر بات ہونی چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے یا نہیں، یہ بات ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے، انہیں بھی اگر وہ سنجیدہ طور پر حق پرست لوگ ہیں اور حقیقت کو جاننے والے ہیں، اسی موضوع پر پہلے بات کرنی چاہیے۔ جب یہ بات طے ہو جائے کہ آپ خدا کے سچے نبی ہیں تو اس کے بعد یہ سوال بے شک کوئی کر سکتا ہے کہ اچھا آپ کی زندگی میں بہت شادیاں کیوں پائی جاتی تھیں۔ بالکل یہ سوال ایسا نہیں کہ یہ سوال کوئی سوال ہی نہیں بنتا، درست ہے یہ سوال بنتا ہے اور اسے پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کا بہترین جواب جو ہے وہ قرآن مجید نے خود دیا ہے، اور اس جواب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت سامنے آتی ہے۔ ان کی، اب ایسا نہیں کہ ان کے حوالے سے کوئی اخلاقی اعتراض سامنے ہے، اخلاقی عظمت سامنے آتی ہے اگر اس کو پوری طرح سمجھیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سنجیدگی سے سمجھیں، اور کم از کم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچا انسان تو مانے۔ اگر سچا انسان ہی نہیں مان رہے تو پھر وہ مطلب ہے اب اس سے کیا کہ نبی نے کیا 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 نہیں کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 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 نہیں کیا، جبکہ آپ کا دعویٰ نبوت ہی وہ نہیں سچ مان رہے۔ تو اصل میں ان لوگوں کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں جو آپ کو سچا نبی ہی نہیں مانتے، ان کے اعتراضات کو ہم کیا کہیں۔ لیکن ان کے اعتراضات چونکہ ہمارے بعض پھر احباب جو ہیں ہمارے مسلمانوں میں بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو میں ان کے لیے یہ عرض کروں گا کہ ان کے حوالے سے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی۔ ایک پوائنٹ تو میں نے آپ کو بتایا جو ابھی جس کا ذکر آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو تھی، کبھی مکے والوں نے جس ماحول میں آپ رہے انہوں نے آپ کی تعریف تو کی، صادق اور امین تو کہا، ایماندار شخص کہا، لوگوں کی خدمت کرنے والا شخص کہا، ہر ایک کے کام آنے والا شخص کہا، اپنی کمائی جو ہے لوگوں پر خرچ کرنے والا کہا، لیکن کبھی کوئی اخلاقی عیب نہیں لگایا، کسی درجے کا کوئی عیب نہیں لگایا۔ یہ نبوت سے پہلے کی زندگی کا معاملہ ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی شخصیت تھے، نعوذ باللہ، جس طرح وہ کہتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں یہ چیز جھلکنی چاہیے۔ جو لوگ عورت پرست ہوتے ہیں نا یا جنس پرست ہوتے ہیں، وہ شراب و کباب تو ان کی زندگی کا ایک بہت ہی بنیادی وصف ہوتا ہے، وہ شراب میں ڈوبے رہتے ہیں اور ناچ اور گانے یہ اس طرح، لیکن آپ تو اس سے بہت ہی دور اور بہت ہی جسے کہیں گے کہ خود بھی باز رہنے والے، لوگوں کو بھی منع کرنے والے، اور اسے عفت و پاکیزگی کے خلاف رویہ قرار دینے والے تھے۔ تو یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا تعلق اس طرح کا تھا کہ آپ کو جنس پرست انسان کہا جائے؟ یہ بھارت اچھا اس طرح۔ اور آپ چیزیں غور کریں کہ آپ نے جتنی زندگی بھی گزاری ہے اس میں آپ نے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک اخلاق کی تعلیم دینے والے کی حیثیت سے گزاری ہے، تو کیا ایسے شخص کی جو خود مطلب کیا کہیں گے ہم عورتوں کے پیچھے پڑا ہو، جس کا ایک کام ہی یہ ہو کہ وہ مختلف عورتیں اپنے دربار میں جمع کرے یا اپنے حرم میں شامل کرے، تو اس کے سے اخلاقی دعوت یا خدا کی عبادت کے پہلو یہ کوئی سنے گا؟ کوئی سنے گا ہی نہیں۔ ایک اور بات بھی اس طرح آتی ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ مکی دور میں جب آپ کی دعوت تھی تو آپ کے سامنے انہوں نے یہ کوشش کی مختلف طریقوں سے کہ آپ توحید کی بات چھوڑ دیں اور شرک کو اختیار کر لیں، یعنی ہمارے ساتھ صلح کر لیں، وہ بھی شرک کو کم از کم کہہ دیں کہ چاہے خود شرک نہ کریں لیکن ہمارے شرک کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ اگر آپ چاہتے ہیں بادشاہ بننا تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن یہ دعوت چھوڑ دیں، توحید کی دعوت۔ اگر آپ عرب کی حسین ترین خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ آپ کو مہیا کر دیتے ہیں، ہم آپ کا بیاہ عرب کی حسین ترین خاتون سے کر دیں گے، یا اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو ہم اتنی دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ امیر ہو جائیں گے، مکے کا کوئی شخص اتنا امیر نہیں جتنا آپ ہو جائیں گے، لیکن آپ اس کام سے بات آ جائیں۔ لیکن آپ نے ان چیزوں کو پرے کا ویلیو نہیں دی، بالکل ان کو رد کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ رد کرتے؟ सिर्फ इस तरह मुमकिन था कि आपके आप इन चीजों से बेनियाज थे। ना बादशाह आपका मसला था, ना हसीन औरत आपका मसला था, ना दौलत आपका मसला था। आपने कहा यह हक बात है कि खुदा एक है, मैं उसी की दावत देने के लिए भेजा गया हूँ, तौहीद की दावत मैं वही दूंगा। ये आपका आपकी जिंदगी जो है वो एक दरवेश शख्स की जिंदगी है, एक ऐसे शख्स की जिंदगी नहीं जो ऐश परस्त हो, जिसकी शराबो कबाब में जिंदगी गुजरती हो, ऐसा हरगिज नहीं है। तो ये पहलू जो है जो जो खासकर गैर मुसलमों की तरफ से इतराजात उठते हैं, मैंने उनको तो कह दिया कि वो इस काबिल नहीं, वो पहले मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानते हैं या नहीं मानते, इस पर उनसे बात होगी, उसके बाद फिर उनसे गुफ्तगू होगी कि आपकी शख्सियत कैसी थी। लेकिन वो लोग जो मुसलमानों में जो जो नबियों को अल्लाह के रसूल मानते हैं, फिर वो परेशान है कि भाई वो जो एतराजात करते हैं वो क्या एतराजात हैं। तो उनके हवाले से मैंने ये गुजारिश की है कि नहीं, इसका कोई मामला नहीं पाया जाता। आप मुख्तलिफ पहलुओं से देखें, आपकी शख्सियत एक पाकीज़ा और इफ्फत माब शख्स की शख्सियत है, यानी कि एक बिल्कुल ही आला सतह के पर जिसने जिंदगी गुजारी है, इस तरह की शख्सियत है। अच्छा, ये जो जिक्र आपने किया कि भाई बाज लोगों ने ये कहा, वो भी मतलब है ये गैर मुस्लिम ही चीज़ को उठाते हैं कि नबी सम की शादियां अमूमन बयान की जाती है 11 शादियां थी, तो 11 नहीं बल्कि 24 थी या बल्कि 30 थी। तो ये इसके लिए करो नाम वगैरह भी लिख देते हैं मुख्तलिफ कि भाई ये नाम थे आपकी बीवियों के, या आपके नहीं बीवियों के नहीं लिखते, वो कहते हैं वो तो बड़ा बड़े बड़े जैसे कहते ना एक तकलीफ दे लफ्ज़ बोलते हैं, आप के जिनसी ताल्लुकात इतनी औरतों से थे। जिनसी ताल्लुक का लफ्ज़ तो एक मनफी मानों में बोला जाता है कि फलां आवारा और अय्याश आदमी जो है उसके कई औरतों से जिनसी ताल्लुक हैं, वो तो ये वो यूं थोड़ा कहते हैं कि बीवियां इतनी थी। लेकिन ये हम जब कहते हैं तो हम कहते हैं कि अपने 11 निकाह किए, या आपके आपके यहाँ कुछ लौंडियां भी थी, या एक लौंडी थी जो उसका सबूत मिलता है, मैं उसका भी जिक्र करूंगा। तो इसकी हकीकत जो है ना, वो मामला ये है कि जो हमारे पास ठोस काबिल एतमाद तारीख है, जिसके दलाइल जो है वाज़े हैं, जिस पर उलमा मुत्तफिक हैं, यानी कि तारीख को जानने वाले, सीरत को जानने वाले मुत्तफिक हैं, वो बताते हैं कि आपने 11 निकाह किए थे। दो ख्वातीन तो आपकी जिंदगी में वफात पा गई थी और जो बाकी 9 थी वो आपकी जिंदगी में आपके साथ रही, और उनकी वफात आपके वफात के बाद हुई थी। ये मुस्तनद रिवायात में, काबिल एतमाद रिवायात में, मुत्तफिक रिवायात में ये चीज पाई जाती है। इसके अलावा बाज़ ज़ईफ रिवायात में ऐसा जरूर मिलता है कि आपने 4-5 या इसके करीब उस ख़वातीन को पैगाम निकाह भेजा, लेकिन निकाह नहीं हुआ, यानी कि ये मामला आपने चाहा कि ऐसा हो लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, इसके अलावा फिर ये भी है कि कुछ ख़वातीन ने, जो 4-5-6 ख़वातीन थी जिन्होंने आपके चाहा कि आपके निकाह में आ जाएं, खुद अपने आप को हिबा करना चाहा, जी हम बगैर कोई हकूक तलब किए महज आपके साथ बीवी का ताल्लुक कायम करना चाहती हैं, तो आपने उनको नहीं कबूल किया। सिर्फ एक खातून है कि जिससे निकाह आपने किया, जिन्होंने खुद को हिबा किया था, मैमूना रजी अल्लाह अन्हा, तो उसको तो आपने कबूल किया लेकिन बाकियों को कबूल नहीं किया। अलबत्ता अब रिवायतों में नाम तो इनका आ गया, तो उसी को फिर वो इकट्ठा कर लेते हैं और वो कहते हैं जी 24 देखें बन रही हैं या 30 बन रही हैं, ये मुख्तलिफ लोगों की रिवायत है। लेकिन ये जिसमें 24 या 30 की तादाद पूरी की जाती है, वो रिवायतें ज़ईफ हैं, ना काबिल एतमाद हैं। वो उन लोगों की रिवायतें हैं जिनमें से किसी की यादाश्त का मसला है मामला। अगर आप फन हदीस से कुछ थोड़ा सा तारुफ रखते हैं तो किसी कोई रावी ऐसे भी होते हैं जिन्हें मतलब है कजाब करार दिया जाता है, वज़ा यानी घड़ने वाले करार दिया जाता है, तो मुख्तलिफ तरह की बातें हैं जिनको फिर उलमा ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये चीजें ठीक नहीं है। नबी सम की जो शादियां हुई थी, जो आपकी बीवियां बनी थी, जिनके साथ आपने अजवाजी जिंदगी गुजारी, वो 11 थी। تو مستند روایات میں ایسے ہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ مسلمان جب بینگ مسلم سوچتا ہے تو وہ یہی چیز دیکھتا ہے کہ جو سچی خبریں ہیں, جو ٹھوس خبریں ہیں, قابل اعتماد باتیں ہیں ہسٹری میں جو بھی آ رہی ہیں, سیرت میں آ رہی ہیں, حدیثوں میں آ رہی ہیں, وہ کیا ہے؟ تو وہ 11 ہے, 11 سے زیادہ بالکل نہیں ہے. یعنی کہ اگر ہوتی تو وہ کیسے چھپی رہ سکتی تھی اور وہ کیسے ہماری کتابوں میں نہ پائی جاتی؟ سیاستہ میں جس کا ذکر ہے وہ 11 ازواج ہیں, 11 سے زیادہ کا ذکر نہیں. وہ ضعیف روایتیں ہیں اور اس کو علماء نے قبول نہیں کیا. تو یہ میں نے مطلب ہے ایک سوال کو تو آپ کا جواب دیا ہے. کوئی پہلو اس کا اگر رہ گیا ہے تو آپ ضرور بیان فرمائیں, ورنہ آپ اگلا سوال کیجیے گا.
کہ جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں وہ جھوٹ ہیں. تو سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ سر پھر کیا وجوہات تھیں نبی پاک کی شادیوں کی کہ آپ نے 11 شادیاں کی؟ کیونکہ اسلام میں تو لگتا ہے کہ پسندیدہ شادی جو ہے وہ ایک ہی ہے. جب حضرت آدم کی سے ابتدا ہوئی انسان کی تو ان کے لیے ایک ہی عورت بنائی گئی تھی, اور اس کے بعد بہت سے انبیاء کرام کی ایک سے زیادہ بیویاں رہی ہیں. سر اس کی کیا حکمت ہے کہ مسلمان مرد کے لیے 4 شادیوں کی حد لگائی گئی ہے اور نبی ہیں وہ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں, کئی بیویاں رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ اس کی وضاحت ہوتی ہے.
اچھا اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تو ایک ہی بیوی تھی, حضرت حوا, یہ تو یقینی بات ہے. لیکن اس سے اگر ذہن اس طرف آدمی کا جاتا ہے کہ پھر ہر انسان کی ایک ہی بیوی ہونی چاہیے, ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے یا انسان کو کرنی نہیں چاہیے, تو یہ بات درست نہیں ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر تو نسل انسانی کی ابتدا ہو رہی تھی, تو ابتدا میں ایک مرد اور ایک عورت سے وہ ابتدا ہوئی. جب یہ ابتدا ہو گئی تو تعدد ازواج یعنی کہ کئی بیویوں کا پہلو کس طرح یعنی کہ ایک ضرورت بنا سوسائٹی میں, یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ جب تمدن وجود میں آیا نا, انسان معاشرت بنا کر وہ اس نے زندگی گزارنے شروع کی, مطلب ہے لوگ چند ایک کی تعداد, مطلب پہلے سینکڑوں میں, پھر ہزاروں میں, پھر اس طرح پھیلی, تو ہر طرح کے لوگ تھے یعنی کہ یعنی مختلف پہلوؤں سے. اب وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا کیا پہلو ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تعدد ازواج یعنی زیادہ بیوی کا ہونا ایک بامانی بات ہے, ایک ضرورت کی چیز ہو جاتی ہے. اگر یہ معاملہ ہو کہ جس خاتون سے شادی کی ہے وہ اولاد نہیں جن سکتی یعنی بانجھ ہے, تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جب معلوم ہو گیا, جو بھی اس کے جاننے والے حکیم یا ڈاکٹر ہیں انہوں نے بتا دیا کہ بھئی اس خاتون سے تو اولاد نہیں ہو سکتی, اور آدمی اولاد چاہتا ہے, فطری چیز ہے, ہر آدمی اپنی نسل کو آگے چاہتا ہے چلے, تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ ایک حل تو یہ ہے کہ اس بیوی کو طلاق دے دے اور چھوڑ دے اور شادی کر لے. دوسرا اس سے بہتر حل یہ نہیں ہے کہ اس کو رکھے اور ایک نکاح اور کر لے جو اولاد کے لیے کر لے اس کو, بجائے اس کے. ظاہر ہے کہ عورت کو آدمی کا سہارا چاہیے, آدمی کو عورت کا سہارا چاہیے. آدمی کا گھر نہیں بنتا اگر عورت نہ ہو, ٹھیک ہے, اور عورت کا گھر چلتا نہیں اگر آدمی نہ ہو. یعنی کہ جو کفالت اور جو حفاظت چاہیے وہ مرد ہی کے لیے ممکن ہوتی ہے کہ وہ عورت کو مہیا کر سکے, اس کا کفیل بنے, اس کا ذمہ دار بنے, یہ تو کام مرد ہی کا ہے. اور گھر بنائے یہ تو عورت ہی بنا سکتی ہے, یہ مرد تو نہیں بنا سکتا. مرد تو بس صرف یہ ہے کہ اپنا معاشی بھاگ دوڑ کرے گا اور آ کے زمین پہ سو جائے گا, لیکن یہ باقاعدہ گھر بنانا, ایک دنیا, پھر اولاد کا معاملہ, ایک پوری نسل انسانی کا آگے چلنا. تو اگر فرض کیجئے اس طرح کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ ضرورت ہوگی نا, اسے نفسی ضرورت کہیں گے, انسان کے اپنی ضرورت نفس کی ہے. اسی طرح ایک اور پہلو, بیوی بانجھ تو نہیں ہے لیکن وہ بیمار ہو گئی ہے اور وہ شوہر کا ساتھ نہیں دے سکتی, تو اب ظاہر ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے उम्र का मामला अगर देखें, 40 साल भी उम्र हो सकती है शौहर की, 50 साल भी हो सकती है, 30 साल भी हो सकती है, बीवी किसी ऐसे हादसे का शिकार हो गई कि ना वो मतलब है कि जिंदगी को उस तरह लेके चल सकती है, ना उसके लिए औलाद जन्ना, हालांकि वो इस काबिल है लेकिन उसके लिए मौजू नहीं है, उसके लिए तो जिंदगी मुश्किल हो गई। तो इस सूरत में अगर ये कानून हो कि हम भी अब दूसरी शादी कर सकते हैं और पहली बीवी भी अब रखें और दूसरी शादी कर लें, तो एक बामानी बात है। फिर एक और मसला भी हो सकता है कि बाज़ वक़्त शदीद रग़बत पैदा हो जाती है किसी खातून की तरफ मर्द में, मर्द के अंदर या किसी औरत के अंदर मर्द की शदीद रग़बत, यानी मियाँ बीवी हैं लेकिन मियाँ का रुझान किसी एक और औरत की तरफ, बहुत मोहब्बत हो गई, बहुत उससे यानी कि जान छिड़कने लग पड़ा उस पर, ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? वो अपनी बीवी जिसे वो ब्याह के लाया था चंद साल पहले, उसे छोड़े, किक आउट करे और दूसरी शादी कर ले, क्या ये ठीक है? इससे ज्यादा बेहतर तो ये है अगर कानून में गुंजाइश हो कि नहीं, तुम अगर इतना ही मजबूर हो गए और तुम्हारे पास कोई हल ही नहीं है, तुम जी ही नहीं सकते इसके बगैर, तो इस बीवी को संभालो जिसको लाए थे, इसको कायम रखो और एक और बीवी कर लो, एक और शादी कर लो, ये भी जरूरत हो सकती है। यानी बगैर इसके कि तलाक दे इसको, उस बांझ को, उस बीमार को, इस यानी कि पहली बीवी को जिसके बाद उसे कोई और औरत बहुत अच्छी लगी, कोई वजह भी हो सकती है, तो दूसरे निकाह की गुंजाइश, अब ये तमद्दन की जरूरतों में से एक जरूरत हो सकती है, किसी इंसान की नफसी जरूरत हो सकती है, ये बात भी हो सकती है। कहीं 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 एक आदमी कहे कि मैं, मेरे लिए एक औरत काफी नहीं है, यानी मैं समझता हूँ कि मेरे मेरे यहाँ जो मतलब है मतलब मर्दाना पहलू है वो एक से ज्यादा बीवियों को अफोर्ड कर सकता है और मैं अपने आप को मजबूर पाता हूँ, तो ये वजह भी बन सकती है किसी के यहाँ। मैं आम नहीं कहूंगा इसको, मैं कहूंगा कहीं किसी के यहाँ, तो कानून में गुंजाइश होनी चाहिए। असल में मैं ये बात कर रहा हूँ, उससे अखज हम नहीं कर सकते कि आदम अलैहिस्सलाम का मामला ये था तो यही कानून आगे बनना चाहिए, यूं नहीं कह सकते। कानून में गुंजाइश होनी चाहिए कि इंसान दूसरी बीवी, बावकत तीसरी और चौथी वो कर सके। अच्छा, इसी तरह फिर कुछ और वजूहत भी हो सकती है जिन्हें हम सियासी वजूहत कह सकते हैं। मसलन जंग हुई, जंग के नतीजे में जो है वो एक बिगाड़ पैदा, एक कौम दूसरी कौम पर को फतह कर लेती है, वो महकूम हो जाती है, मफतू हो जाती है वो कौम। तो अब ये अगर फतह करने वाली जो कौम है या जो ये लोग हैं, ये अगर चाहें कि नहीं हम उस कौम को जलीलो ख़ार नहीं करना चाहते, हम कुछ वजूहात थी, कुछ मजबूरियां थी, उनके यहाँ कोई खराबियां थी जिनकी वजह से हमें जंग करना पड़ी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इन जंग के असरात को मिटाएं, तो इसका एक एक और कई हल इसके हो सकते हैं। तो दूसरी कौम के जो अफराद इनके घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं वो तो ज़ाहिर ख़वातीन ही है ना, तो वो ख़वातीन, ऐसा भी हो सकता है। सियासी वजूहात भी हो सकती हैं कि जो कि इसका बायस बने कि दूसरी शादी की गुंजाइश होनी चाहिए, अगर दूसरी शादी की गुंजाइश न हो तो फिर जाहिर है कि ऐसा नहीं मुमकिन होगा। मुख्तलिफ पहलू में बयान कर रहा हूँ। समाजी वजूहत भी हो सकती है कि एक खातून आपके खानदान में या आपके जानने वालों में बेसहारा और अकेली रह गई, वो ना अपने लिए कमा सकती है ना वो उससे कोई निकाह करने को तैयार है, तो एक आदमी अगर उससे निकाह कर लेते हैं उसे सहारा देने के जेन से, यानी कि लोग कैसे करते हैं इसको ना देखें, लोग ऐशो इशरत के लिए करते हैं तो गलत करते हैं, उसके हवाले से बड़ी सख्त हदीस से के अल्फाज हैं, यानी कि जो सिर्फ मजे लेने के लिए करता है उसको इंतहाई नापसंदीदा अल्फाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, चखने वाला और चखने वालियां कहा है ऐसे जो शादी इस दैवीय से करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा भी तो होता है ना, कुछ शरीफ लोग भी तो होते हैं, तो क्या उनके लिए कानून में गुंजाइश होनी चाहिए कि वो किसी मजबूर को सहारा दे सकें? यकीनन होनी चाहिए। बाद वक्त जंग, बल्कि ये ऐसा हुआ भी कि जंग की वजह से ये हो जाता है कि किसी कौम के मर्द हजरात जो हैं जंग में मारे गए, बहुत ज्यादा मारे गए। जैसे दूसरी आलमगीर जंग में ना, ये बड़ी मशहूर बात है, आप लोग जानते ही होंगे कि जर्मनी में औरतों की तादाद 70% हो चुकी और मर्द 30% थे, यानी जर्मन मर्द 30 के मुकाबले में 70 औरतें थी, यानी परसेंटेज ये थी। अमूमन 50-50 होते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत फर्क के साथ ना, ये हर कौम में 50 मर्द 50 औरतें, 50 मर्द 50 औरतें, यानी कि अगर 1 करोड़ मर्द हैं तो 1 करोड़ औरतें हैं तकरीबन, इस तरह से रेशो चलती है। लेकिन वहां पे बंदे बहुत मारे गए, वो आलमगीर जंग थी, कितने सालों साल रही वो, 6 साल गालबन चली वो जंग, तो उसमें इतने मर्द मारे गए। अब औरतें जो थी वो सोसाइटी में, जाहिर उनके लिए क्या रास्ता था, कोई रास्ता नहीं था। वहां तो चूंकि एक ऐसा कल्चर नहीं था कि भाई शादियां इस तरह की जाएं, तो फिर आवारगी और एक करप्शन और इस तरह के मामला, यानी इंतहाई यूं समझे फहाशी फैली। तो ऐसी कानून में गुंजाइश होनी चाहिए कि भाई इस तरह की सूरत हाल में ये तरकीब दी जाए कि मर्द हजरात एक से ज्यादा शादियां करके ख्वातीन को अपने अंदर जम कर लें, सोसाइटी वही सोसाइटी अपनी ख्वातीन को अपने अंदर जम कर ले। ऐसी बिल्कुल कुछ वजह हो सकती है। और ये भी हो सकती है कि अगर अच्छे रिश्ते मुयस्सर ना हो, मतलब जो रिश्ता मुयस्सर है वो किसी आवारा में खट्टू हुआ है, लेकिन एक और रिश्ता है मुयस्सर है कि जिसमें एक शख्स रहता है कि मैं दूसरी शादी कर लूं, और मतलब ले वो शरीफ आदमी है, काबिल एतमाद आदमी है, स्टेब्लिश आदमी है, तो अगर कानून में गुंजाइश होगी हाँ तुम दूसरी शादी कर सकते हो, तो जाहिर है कि एक मुयस्सर रिश्ता ये बन जाता है। तो मैं सिर्फ कानूनी तौर पर मुतअद्दद शादियों की इजाजत की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने सिर्फ इतनी बात की है। तो हजरत आदम वाले पॉइंट से ये अखज करना कि नहीं नहीं एक से ज्यादा की जरूरत नहीं, एक से ज्यादा दुरुस्त नहीं, ये ठीक नहीं है। और उसके बाद फिर कोई जेन्युइन वजह है तो बिल्कुल ठीक है, कोई एतराज नहीं होगा, बालकत अच्छी बात होगी, बालकत काबिल अजर बात होगी। ये मैं आपके सवाल का जी
क्या मकसद
किस चीज का जी,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये दुरुस्त बात है, मैं इसको बयान करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की, तो एक सवाल तो इसमें अच्छा चलें ठीक है कि कानूनी तौर पर गुंजाइश होनी चाहिए एक से ज्यादा शादियों की, और मुसलमानों के यहाँ मालूम है कि भाई 4 तक शादियां कर सकते हैं, सूरह निसा की आयत में बयान किया गया है। तो अब एक सवाल ये पैदा होता है कि नबी सन 11 शादियां क्यों की थी, एक तो 4 तक अब महदूद नहीं रहे एक बात, और दूसरी बात ये कि इतनी शादियों की आपको जरूरत क्या थी, ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है और इसका मालूम होना चाहिए कि इसका क्या जवाब है। कुरान मजीद ने चूंकि इस मामले को खुद हैंडल किया है, इस मामले में खुद कानून दिया है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के हवाले से अलग से सूरह अहज़ाब में कानून जो है वो बयान किए गए, 51 से 53 आयत तक आयतें जो हैं सूरह अहज़ाब की, उनमें वो कानून बयान किया गया है कि आपके लिए निकाह का कानून आम मुसलमानों के कानून से जो 4 तक का कानून है उससे मुख्तलिफ है, यानी ये बताया गया खालिस आप ही के लिए है, बाकी सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए वो है जो हमने बयान कर दिया है वहां पर। अच्छा अब आपको मैं ये बयान करना चाहूंगा कि किसी भी शख्स के मामलात को, उसके अफाल माल को अगर आपने देखना हो तो आप कैसे देखेंगे, वही वो कौन है उसे देखेंगे, तो फिर उससे पहचानेंगे कि उसका अमल क्या है। एक छोटी सी मिसाल है, एक खातून को हमने देखा, एक बच्चे को उसने पकड़ा हुआ है बाजू से और उसे एक जोर से थप्पड़ लगाया, तो अब हर देखने वाले का ये देखो ये खातून कितनी जालिम है, इस बच्चे को, छोटे से बच्चे को जो 6 साल का है 7 साल का है थप्पड़ लगा दिया उसको, तो ये तो बड़ी गलत बात है। तो हमने जाके पूछा भी क्या मसला है, क्यों तुमने, कौन हो तुम, तुमने क्यों किया, कहती मैं इसकी माँ हूँ, और ये बच्चा जो शरारतों से बाज नहीं आता, तंग करता है, ये जो है इसकी आदत है कि ये लोगों के घर में ना पत्थर फेंकता है ऐसे ही, मतलब जब इसका मूड आता है ना तो तब तो कभी किसी के घंटी मार देगा, कभी कुछ कर देगा, तो ये इस तरह की शरारतें करते हैं, तो मैं इसको तंबीह कर रही हूँ, मैंने थप्पड़ इसलिए मारा। अब हम कहेंगे ये माकूल बात, ये तो खैर ठीक है, अब कंट्रोल करना चाहिए बच्चे को, प्यार मुबत से सिखाएं, और अगर ना बाधे तो उसके कान खींचने चाहिए, जरूरी है कि उसे काबू किया जाए, वरना क्या लोगों को तंग होने दिए जाए। अब जिस तरह ये बात है ना, अब ये देखें आप कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले हम ये देखेंगे कि आप कौन थे, आप अल्लाह के नबी थे। नबी होना से क्या इंसान बशर नहीं होता? हाँ बशर तो होता ही है। अच्छा, बशर से इजाफी क्या बात हुई? नबूवत की बात। नबूवत जो है वो खुदा की तरफ से पैगाम लेके आती है, यानी नबी पैगाम लेके आता है हिदायत का, वो कानून लेके आता है, शरीयत लेके आता है लोगों के लिए, उसवे हसना होता है नबी। अच्छा, इसके अलावा नबी की शख्सियत क्या थी? आप खातमुन नबीन थे, हम सब जानते हैं कि आप आखिरी नबी थे, आप शरीयत आप पर मुकम्मल होना जरूरी थी, तो ये भी ठीक है। अच्छा, एक और लफ्ज आता है आपके लिए रसूल होने का, कि आपकी आप सिर्फ नबी ही नहीं, आप अल्लाह के रसूल भी थे। तो रसूल की शख्सियत के कुछ और पहलू भी होते हैं, कुछ और जिम्मेदारियां होती हैं जो नबी से बढ़कर होती हैं। नबी की जिम्मेदारियां तो अदा करनी ही होती हैं, लेकिन उससे बढ़कर कुछ जिम्मेदारियां आपको यानी कि जो रसूल होते हैं उसे दी जाती है। इस हवाले से हम देखें तो अब नबी सन की जिंदगी का मुताला करें। पहली चीज जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा से शादी की। हजरत खदीजा की उम्र उस वक्त जो रिवायतों में आती है वो 40 साल की आती है। बाद मुहक्किकीन तहकीक करने वालों ने कहा कि नहीं 40 नहीं 28 साल थी। ठीक है, मतलब 40 हो या 28 हो, बहरहाल उनके पहले निकाह हो चुका था, उनकी शादी पहले हुई थी, फिर उनके शौहर की वफात हो गई, तो वो एक बेवा खातून थी, उनके माली हालात अच्छे थे, उन्होंने कारोबार के लिए नबी सम को यानी हायर किया कि भई आप मेरा माल ले जाएं तो मैं इसको आपको नफा दूंगी इसमें से जो भी अपने, तो एक तरह के उन्हें समझने का देखने का मौका मिला, उन्होंने पैगामे निकाह दिया, नबी ने कबूल किया और उनसे शादी हो गई। ये शादी 25 साल तक चली। इसी शादी के दौरान आपको अल्लाह ने नबी बनाया। जब नबी सलम की उम्र 40 साल हुई ना, शादी तो 25 साल की उम्र में हुई, फिर जब 40 साल उम्र हुई तो आपको नबूवत मिली। नबूवत के फिर तकरीबन 10 साल ये हजरत खदीजा आपके साथ रही, और आपने कोई दूसरी शादी नहीं की, सोचा भी नहीं। हजरत खदीजा की उम्र बहरहाल नबी सलम से ज्यादा थी, चाहे कुछ साल ज्यादा थी चाहे 15 साल, अगर वो 40 साल की उम्र में उन्होंने शादी की थी और आप 25 के थे तो 15 साल का फर्क हुआ ना, तो ये 15 साल बड़ी थी नबी सलम ने। अब ये भी बकायदा एक दलील है कि अगर नबी उस तरह होते, नऊज़ुबिल्ला, ऐश परस्त इंसान होते, अय्याश आदमी होते, नऊज़ुबिल्ला, तो आप कभी एक एक खातून जो उम्र में बड़ी है उस तक महदूद ना रहते। लेकिन कोई सवाल ही नहीं, कोई इम्कान ही नहीं, कोई बात ही नहीं कि किसी और औरत की तरफ आपने निगाह भी उठा कर देखा हो। इसके बाद उनका इंतकाल हो गया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल थी तो हजरत खदीजा की 65 हुई तो उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, उनके इंतकाल के बाद आपने फिर एक खातून से शादी की, हजरत सौदा से। 3 साल वो आपकी जौजियत में रही, वो जौजियत में रही और वो अकेली थी 3 साल, और वो भी 50 साल की उम्र थी, उनकी भी नबी की 50 की और उनकी 50 साल की उम्र। नबी सलम के कोई इस तरह का मामला नहीं था कि भाई मुझे कोई और औरत भी करनी चाहिए शादी, ये करनी चाहिए वो करनी चाहिए। तो हजरत सौदा 3 साल आपके साथ मतलब रही इसी तरह, अब फिर उसके बाद भी वो जिंदा रही आपके मतलब वफात तक, वो जिंदा ही थी हजरत सौदा। एक और जो मैं बयान करने लगा था कि नबी सलम अल्लाह के नबी थे, यानी कि मक्के के जमाने ही में ख्वाब में ये चीज दिखाई गई, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो आप पर वही लाते थे, कुरान नाजिल करते थे, वही ख्वाब में आपके पास आए। यानी कि एक तो वही तो और हालत होती थी ना, वो तो बेदारी में आते थे, और उन्होंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तस्वीर दिखाई आपको, और वो तस्वीर या शक्ल जो भी जिस तरह भी होगी वो मामला वो दिखाई, और उन्होंने कहा कि ये खातून दुनिया और आखिरत में आपकी बीवी होगी। तो हजरत आयशा जो हैं उनके बारे में नबी ने कभी सोचा भी नहीं था। वो कहते हैं कि मैं हैरान हो गया कि अच्छा ये तो अबू बकर की बेटी है, मैं इनसे निकाह का मामला होना है, मुकद्दर में ये है, मैं तो नहीं मेरे जहन में। अगर खुदा को मंजूर है तो वो ही फिर कोई इसका रास्ता बनाएगा, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई इसकी नबी से प्लानिंग की या इसका कोई अपने नहीं है, तो फिर अल्लाह के काम है, अगर उसने खबर दी है। तो ये कहते हैं दो दफा ये ख्वाब का आना हुआ। फिर जब हजरत खदीजा के इंतकाल हुआ तो उस मौके पर जिस खातून ने नबी को कहा था कि आप शादी करें, तो आपने पूछा था कि किससे मैं कर लूं शादी, क्योंकि बच्चे थे हजरत फातिमा जैसे छोटी सी थी और भी आपकी बेटियां जो थी, तो उनको संभालने वाला कोई नहीं था, तो जाहिर है कि फिर शादी अपने हजरत सौदा से की, वो फिर उनकी खिदमत करती रही। लेकिन हजरत आयशा का नाम भी उन्होंने लिया, उस खातून ने जिन्होंने हजरत सौदा का रिश्ता बताया था, उन्होंने ही हजरत आयशा का नाम लिया। तो उन्होंने कहा कंवारी भी हैं यानी हजरत आयशा, और एक सन रसीदा भी हैं यानी कि ब्याही कह लें कि जो पहले से शादीशुदा थी लेकिन अब वो अपने घर में ही है, वो मामला खत्म हो चुका, गलबन बेवा हो चुकी थी वो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम बात करके देखो। अब इस मौके पर नबी ने कहा कि बात करके करो, तो यहाँ पे वो सिलसिला जो खुदा को मंजूर था हजरत आयशा के हवाले से शुरू हुआ। हजरत आयशा के वाले से जब पूछा गया अबू बकर सिद्दीक से, तो उन्होंने कहा उसके तो हम एंगेजमेंट कर चुके हैं फला साहिब के लड़के से, तो मैं तो जब तक वो मेरा वादा है उनके साथ है तो उससे मैं बात कर लूं पहले। तो उनसे बात की। अब ये देखिए एंगेजमेंट हो चुकी, यहाँ एक ज़िमनन मैं जिक्र कर दूं कि ये एंगेजमेंट छोटी बच्चियों की नहीं होती, उन सरसरी नाम ले दिया जाए तो अलग बात है, और उसको कंवारी भी नहीं कहा जाता, वो रिश्ता बताने वाले ने कहा था कंवारी है, तो कंवारी तो नौजवान लड़की को कहा जाता है ना। तो हजरत आयशा की उम्र शादी के वक्त या निकाह के वक्त मतलब है ये जो बयान की जाती 6 साल की, ये रिवायतों में तो आती है लेकिन इस पर बहुत तनकीद है और साफ महसूस होता है कि नहीं आपकी उम्र जो है इससे ज्यादा थी, गालबन 16 साल के करीब थी आपकी उम्र जब आपका निकाह हो। तो खैर और जब रुखसती हुई तो 19 साल के करीब थी, ये चीज ज़िमनन में एक अर्ज कर दी। अच्छा बहरहाल वो हजरत अबू बकर सिद्दीक गए और उन्होंने उन साहिब से जिनके बेटे के साथ इनकी एंगेजमेंट हुई थी उनके पास गए, तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि अबू बकर हम तुम्हारे तुम्हारी बेटी को नहीं लाना चाहते, वो हमारे बेटे को भी गुमराह कर देगी, मुसलमान बना देगी, तो हम नहीं इस रिश्ते को रखना चाहते। वो उन्होंने तोड़ दिया खुद ही, उन्होंने खुद तोड़ दिया। तो अब अबू बकर सिद्दीक जो है उनके लिए मुमकिन था। तो उस मौके पर ऐसा हुआ कि निकाह तो हो गया, यानी कुछ टाइम के बाद जो भी टाइम उसमें लगा निकाह हो गया, लेकिन रुखती नहीं हुई। रुखती मदीने में जाके हुई, 3 साल बाद रुखती हुई, जैसे मैंने बताया ना कि 19 साल की उम्र में रुखती हुई। वहां पे क्या वजूहत होंगी, जो भी इसकी वजूहत होंगी, वो जो 6 साल वाली रिवायत बताते हैं ना लोग, तो वो कहते हैं कि नहीं जब बालिग होंगी तो रुखती होगी। जाहिर है कि इस्लाम में रुखती तो बालिग औरत की होती है, नाबालिग की रुखती नहीं हो सकती। अगर कोई वली निकाह भी कर दे तो, लेकिन रुखती तो होगी बालिग होने पर ही, शौहर के पास तब जाएगी जब वो एक बालिग लड़की होगी ना। ये एक जो शरीयत का मामला है वो मैंने आपको बताया। तो अबू बकर सिद्दीक जो है उन्होंने जाहिर है निकाह हो गया, तो ये वही कि खुदा की तरफ से नबी के लिए कोई खातून खुदा के ने मुकद्दर की हुई थी, और उसके हम असरात तो देखते हैं ना कि फिर हजरत आयशा ने दीन की जितनी खिदमत की है इतनी खिदमत किसी और को मुयस्सर नहीं आई। तो अब ये जो बात है कि ये ज़ाहिर खुदा की प्लानिंग, वही बात जो ख्वाब में आई कि ये आपकी बीवी मुकद्दर है दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो उसी चीज को यानी कि अल्लाह ताला ने उसका सिलसिला कर दिया। अब इसके बाद अब आगे देखें, आगे मामला यूं हुआ कि जब मदीने में आपकी हिजरत हो गई नबी सन की, तो वहां पर 3 हिजरी में जंगे उहद हुई। पहले जंगे बद्र हुई, जंगे बद्र के बाद जो है ना जंगे उहद हुई। जंगे बद्र में गालबन 13-14 साहबा शहीद हुए हैं, तो लेकिन जब जंगे उहद हुई तो उसमें 70 साहबा शहीद हुए। उस मौके पर सूरह निसा नाजिल हुई। सूरह निसा नाजिल हुई तो अब उसमें बाकायदा ये कहा गया कि यतीम बच्चों को की निगरानी जो है वो लोगों ने फिर ले ली ना, जो 70 साहबा शहीद हुए तो उनकी बीवी बच्चे जो थे उनको मुख्तलिफ खानदानों ने अपने अंदर एक तरह से समो लिया कि भाई इनकी इनकी किफालत हम करेंगे, इनके खर्च वगैरह ये वो मुआशी मसले इनको हम करेंगे। तो उस मौके पर अल्लाह ताला ने तरगीब दी कि अगर किसी के लिए ये मुश्किल है कि वो यतीम बच्चों को पाल सके इस तरह, तो ऐसा करो उनकी माओ से निकाह कर लो, या उनकी फर्ज कीजिए बहनों में से एक बड़ी बहन है कि जो उस निकाह की उम्र की है, तो उससे निकाह करके इनको अपने खानदान में शामिल कर लो। यानी या तो तुम्हारी औलाद हो जाएंगे या तुम्हारे यानी ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे। उस सूरत में तो अमूमन मामला माओ का था ना कि वो जो बेवा औरतें हुई थी उनको समेटना था, तो ये तरगीब दी गई और मुसलमानों ने फिर इस पर अमल भी किया। तो जाहिर है कि ये मुसलमानों ने ही उनको अपने अंदर समोना था ना, और बंदे कितने थे वहां पर मदीने में, कोई मतलब 1000 के करीब आप कह सकते हैं खानदान होंगे, 1000 से ऊपर नहीं मतलब मुसलमानों के, तो उसके अंदर ही समोना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस मौका पर जंगे उहद में शहीद होने वाले 3 अफराद की बेवाओं से शादियां की। नबी सन उसवे हसना थे, आपको नबी की हैसियत से उस तरगीब पर जो अल्लाह ने दी थी कि भई इनको संभालो, अब तुम इनको संभालो और अपने अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहो तो बना लो, अगर तुम्हारे लिए इसमें सहूलत है। तो नबी सन ने 3 फैमिलीज को, हजरत हफ्सा, इनके शौहर भी जंगे उहद में शहीद हुए, ये बेवा हो गई, हजरत उमर इनके बारे में फिक्रमंद थे कि भई इनका मैं निकाह किससे करूं, उन्होंने खुद हजरत उस्मान से कहा, अबू बकर सिद्दीक से कहा कि आप निकाह कर लें, आप निकाह कर लें, तो नबी से कहा कि इनसे मैं निकाह करना चाहता हूं, तो उनसे निकाह हो गया हजरत हफ्सा का। ये फिर इसके बाद जो अगली है जौजा हजरत हफ्सा के बाद जैनब बिनत खुज़ैमा, इनकी शौहर भी जंगे उहद में शहीद हुए थे, तो आपने इनसे भी निकाह किया, ज़ैनब बिनत खुज़ैमा से भी आपने निकाह किया। और उसके बाद आपके पास अब 4 बीवियां थी, यानी कि ज़ैनब बिनत खुज़ैमा की जब आपने शादी कर ली ना तो 4 बीवियां, खदीजा का तो रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो चुका, हजरत सौदा थी, हजरत आयशा आ चुकी थी, हजरत अफ्सा से शादी हुई, ज़ैनब बिनत खुज़ैमा से हुई, तो 4 के कानून के मुताबिक ये 4 बीवियां थी। और नबी सन के लिए कोई और कानून इस वक्त तक नाजिल नहीं हुआ था कि आप कोई और शादी कर सकते। फिर इसके बाद ऐसा हुआ कि ज़ैनब बिनत खुज़ैमा का इंतकाल हो गया, यानी कुछ ही महीनों के बाद ना ज़ैनब बिनत खुज़ैमा का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद उम्मे सलमा जिनके शौहर जख्मी हुए और फिर वो शहीद मतलब जंगे उहद में, तो उनके शौहर भी जंगे उहद में शहीद हुए थे, शायद फौरन नहीं कुछ अरसे के बाद, तो ये भी बेवा हुई, तो नबी ने इनसे भी फिर शादी कर ली कि ये भी जंगे उहद में इनके शौहर शहीद हुए। 3 औरतें हैं, हजरत अफ्सा, हजरत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा और उम्मे सलमा, इनके शौहर जंगे उहद में शहीद हुए। और जो आयतें नाजिल हुई सूरह निसा की, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 ख्वातीन से शादियां की। और फिर इसके बाद मामला ये हुआ कि आपकी एक और शख्सियत खातमुन नबीयीन की शख्सियत है। खातमुन नबीयीन का मतलब जाहिर है ये है कि आप नबियों के आखिरी नबी है ना, कि आपके पास कोई भी नहीं आना, और कोई नबी नहीं आना तो खुदा की तरफ से जो शरीयत आ चुकी यही है, इसके बाद कोई शरीयत नहीं आनी, तकमील शरीयत किसी और तरीके से नहीं, यही तकमील शरीयत होनी थी। अरबों के यहाँ एक रवायत था वो ये कि जिसको कोई शख्स मुंह बोला बेटा बना ले वो उसके सगे बेटे जैसा हो जाता है। ये अरब कल्चर था, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये अरब कल्चर था कि आपने मुंह बोला बेटा कहा है ना तो इसकी बीवी आपकी बहू। तो आपने ज़ैद बिन हारसा को अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था। ज़ैद बिन हारसा के साथ जैनब बिनत जहश की शादी हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने इसरार पर। जैद बिन हारसा आजाद करदा गुलाम थे और जैनब बिनत जहश एक खानदानी आजाद औरत थी और जो अपने अंदर एक मतलब बहुत वकार की साहिब वकार औरत थी कि जैसे बात ख्याल होता है ना कि भाई मेरा खानदान एक ऊंचा खानदान है हमारा या मैं एक सरदार की बेटी हूँ या सरदारों के घर से मेरा ताल्लुक है। आदमी एक कॉन्फिडेंस होता है इस तरह का। ज़ैद बिन हारसा मुनकसर मिजाज थे लेकिन चाहते थे कि गुलामों का स्टेटस बुलंद हो, तो आपने एक आजाद खातून को की शादी आजाद करदा गुलाम से कर दी, लेकिन नहीं चल सकी, ये नहीं निभ सकी। तो जब नहीं निभ सकी तो हजरत ज़ैद ने इनको तलाक दे दी। तो ये जाहिर है कि नबी सल्लम के कहने पे इन्होंने शादी की थी। जब अब ये तलाक याफ्ता होगी तो इनके लिए एक जहर मसला पैदा होगा कि मैं तलाक याफ्ता औरत हूँ। जहर एक फर्क तो होता है, गो अरबों में ना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बात होती है, इतना नहीं, लेकिन बहर फर्क तो होता है। कंवारी का जो है मुकाम वो वहां भी एक ज्यादा समझा जाता था निकाह के पहलू से। तो ज़ैनब बिनत जहश से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में ये ख्याल था कि इसके इनके साथ मैं शादी करता हूँ तभी इनके तारीफ कल्ब होगी जो इन्हें दुख पहुंचा है, क्योंकि मेरे कहने पे इनका निकाह हुआ और नाकाम हो गया। तो लेकिन ये तो फिर अगर निकाह करते तो पांचवी बीवी होती। इस मौका पर अल्लाह ने ये कह दिया कि हमने तुम्हारा निकाह कर दिया, यानी कि ज़ैनब बिनत जहश से अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान हुआ और साथ ही एक कानून नाजिल हो गया जो सूरह अहज़ाब में कि आपके लिए निकाहों का वो चार वाला कानून नहीं, आपके लिए खालिसतन एक दूसरा कानून हम नाजिल कर रहे हैं। अब वो देखेंगे कि वो क्या कानून नाजिल हुआ। अच्छा, तो ज़ैनब बिनत जहश से फिर आपने शादी कर ली, ये आपकी पांचवी बीवी फिर थी इस हवाले से, क्योंकि चार का कानून जो है वो अब आप पर लागू नहीं रहा, आपके लिए दूसरा कानून आ गया था। वो कानून क्या था अब हम इसको करेंगे। ज़ैनब बिनत जहश से ज़ाहिर मैंने वादे कर दिया कि वो जब शादी की तो क्यों की, इसलिए कि अमलन उस रस्म को तोड़ दिया जाए कि मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी ममनू है, जैसे बहू से शादी करना है। ये तो आपने अमलन साबित किया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अल्लाह के नजदीक जायज है, उसकी शरीयत में ये दुरुस्त है और मैं ये शादी कर रहा हूँ, ताकि वो तबीयतों में एक ग्रेस सा हो जाता है ना, कहना नहीं ये तो आराम है, ये तो नाजायज है, ये तो जायज नहीं है, वो बिल्कुल साफ हो जाए। अब ये जो है मामला, इसके बाद जी आगे ये हुआ कि जो निकाह खसूसी कानून जो नाजिल हुआ उसमें ये आपको बताया गया कि आप यानी कि एक बात तो ये है कि वो खसूसी कानून नाजिल क्यों किया, उसकी हिकमत भी अल्लाह ने बता दी कि ये कानून मैं नाजिल इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए कोई तंगी ना रहे, यानी निकाह करने में जो लिमिट थी चार की उसको ख़त्म कर दें हम और आपकी ये तंगी खत्म कर दें। अगर आप ज्यादा निकाह करना मुनासिब समझें, उसकी जरूरत हो तो आप कर सकें, यानी कि उसमें रुकावट ना हो। अब वो उन्होंने कहा कि लेकिन ये निकाह आप करेंगे कहाँ, आप आम मुसलमानों की तरह किसी भी ना महरम खातून से, यानी मुहर्रमात से तो नहीं ना हो सकता निकाह, जैसे मतलब भांजी भतीजी बहन इससे तो निकाह नहीं होता ना, वो 15 रिश्ते हैं जिनसे निकाह नहीं हो सकता, और इनके अलावा कोई भी मुसलमान किसी मुसलमान खातून से निकाह कर सकता है। अच्छा, अब मसला ये है कि यहाँ इन्होंने कहा कि आपके लिए ये कानून नहीं कि आप किसी भी मुसलमान खातून से निकाह कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मुहर्रमात से तो इंसान कर ही नहीं सकता होता ना, उनके अलावा नबी सल्लम के लिए हर मुसलमान खातून जायज नहीं थी, बल्कि इस कानून के मुताबिक कहा कि आप तीन दायरों में निकाह कर सकते हैं, तीन दायरे हैं बकायदा। एक वो ख्वातीन जो जंगी कैदी की तौर पर आपके पास आए, उनकी इज्जत अफजाई के लिए, उन जंगी कैदी खवातीन की इज्जत अफजाई के लिए अगर आप निकाह करना चाहें, कोई जंगी मतलब है असीराने जंग में से कोई आई, वो जाहिर है वो उस जमाने का तो असूल ये था ना कि वो लौंडी के तौर पर फिर वो फौज में तकसीम कर दी जाती थी। तो अगर आपके पास आती हैं कोई इस तरह तकसीम होके, तो आप चाहें तो उन्हें आज़ाद करके उनसे निकाह कर सकती हैं। ये निकाह का कानून है कि उसको कैदी बना के नहीं रख सकते, यानी लौंडी बना के नहीं रख सकते। उस जंग में हासिल होने वाली खातून को आप आज़ाद करके निकाह करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपने फिर यानी कि और ये निकाह क्यों करेंगे भाई, वो तो कबीला मफ्तू हो गया, उसके मर्द पकड़े गए, उसकी औरतें पकड़ी गईं, जाहिर एक रुसवाई है हो जाती है ना, जो मफ्तू हो जाए, जो जिस पर गलबा आ जाए किसी दूसरी कौम का। तो अब अगर इनको आप जब निकाह करेंगे तो आप तो मुसलमानों के नबी की बीवी बन गई ना, ये तो बड़ा मुकाम व मर्तबा दे हासिल हो गया उस औरत को। हाँ, तो इसकी इज्जत अफजाई के लिए आप निकाह करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपने इस पहलू से ना दो, यानी एक ये दायरा था कि आप इसमें निकाह कर सकते हैं। अब इस हवाले से आपने किन किन औरतों से निकाह किया वो मैं बाद में बताता हूँ। दूसरा पॉइंट ये बताया गया कि आप उस खातून की दिलदारी के लिए निकाह कर सकते हैं जो खातून चाहे कि जी मैं आपसे आपके निकाह में आना चाहती हूँ। अगर आप समझें कि ठीक है मैं इससे निकाह कर लूँ, आपको पसंद हो, आप मौजू समझें, आप अपने नबी होने की हैसियत से जो मामलात आपको दरपेश हैं उनके हवाले से आपको हिकमत महसूस हो कि ये निकाह करना मौजू है, तो आप चाहें तो निकाह कर सकते हैं। तो यानी कि ये निकाह ये उसने अपने आप हिबा किया, यानी मैं कोई हक के मेहर नहीं चाहती, मैं कोई मुतालबा नहीं आपसे रखती, जो बीवियों का मुतालबा होता है ना, मैं ऐसा मुतालबा नहीं कर रही, जो आप देंगे वो तो आपकी मर्जी है, तो मैं सिर्फ आपकी बीवी बनना चाहती हूँ। तो अगर आप निकाह करना चाहें तो कर सकते हैं, इस दायरे में भी कर सकते हैं। पहले में वो जंगी कैदी है और वो आई है तो आज़ाद करके निकाह, दूसरे दायरे में वो अपने आप को हिबा करती है और आप निकाह करना चाहें तो कर सकते हैं। तीसरा दायरा वो है कि आपकी चचाजाद या मामूजाद या फुफीजाद या खालाजाद जो रिश्ते की बहनें हों और उन्होंने हिजरत भी की हो आपके साथ, घर बार को भी छोड़ा हो, अजीज व अकरबा को भी छोड़ा हो, यानी कि तरह तरह की कुर्बानियां दी, यानी कि ये जो आपकी फर्स्ट कजन होंगी ना, तो इनमें से जिन्होंने हिजरत की आपके साथ, इस्लाम लाई, हिजरत की, घर बार को छोड़ा और इस और फिर उनको इस तरह का मामला पेश आया कि भाई अब वो बेवा हो गई है या कोई तलाक याफ्ता है या कोई इस तरह का मसला है, तो आप इधर निकाह करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये निकाह आप जाहिर है क्यों करेंगे, तालीफ कल्ब के लिए कि भाई तुमने इतनी कुर्बानियां दी हैं और मेरा साथ दिया, नबी का साथ दिया तुमने, अब इसमें से जिसके साथ आप मुनासिब समझें, कि होने को तो तीन चार पांच हो सकती हैं यानी इस रिश्ते की खवातीन, लेकिन जिससे आप चाहें तो उससे आप शादी कर सकते हैं, यानी कि पहली असीराने जन में जो कैदी खवातीन, दूसरी जो हिबा करे, और तीसरी जो आपकी ये रिश्तेदार फर्स्ट कजन जो है वो उनमें से जिन्होंने हिजरत की और अपने घर बार को छोड़ा, इस्लाम की खातिर कुर्बानियां दी, वो अगर कोई बेवा हैं या मुतल्लिका हैं तो आप उनके तालीफ कल्ब उनके दिल को ढारस देने के लिए आप उनसे शादी कर सकते हैं। तीनों चीजें आप देख लें, एक इज्जत अफजाई है एक जगह, एक दिलदारी है और एक जो है तालीफ कल्ब। नबी ऐसा क्यों नहीं करेगा, नबी तो जब शादी करेगा तो इसी दावी से करेगा, या तो बशरी तकाजे से करेगा ना, वो तो फिर वो पहलू ठीक है कि भाई मैं औलाद चाहिए मुझे या मैं मतलब अपना जोड़ा चाहता हूँ, वो तो हजरत खदीजा से शादी की, हजरत सौदा से शादी की। अब ये जो पैदर पे शादियां हो रही हैं ये क्या मामला है, तो ये वही अखलाक आलिया पे फाइज शख्स के हवाले से कुछ जिम्मेदारियां हैं कि भाई आप जंग करके आपने उस कौम को बिल्कुल कब्जे में कर लिया और उसके अफराद पकड़ लिए, तो अब उसको इज्जत और मुकाम देना, तो फिर ये एक उसमें एक तो उसने सलूक है, एक अच्छा रवैया है, यानी कैदियों को भी एक बड़ी इज्जत का मुकाम दिया गया। वैसे वो आता है ना कि सहाबा किराम खुद खजूरें खा लेते थे और उन्हें मैदे की रोटी खिलाते थे, जो कि एक उस मुआशरे में बड़ी अहम चीज होती थी। उनको उनको उनका ख्याल रखते थे कैदियों का, ये उसने सलूक की था। तो उसने सलूक का ये पहलू भी जो है, अमूमन बादशाह क्या करते हैं, जलील और रुसवा करते हैं दूसरों की औरतों को पकड़ के। यहाँ मामला ही और है, मामला ही और है, बात ही और है। इसी तरह जो महज कोई खातून चाहती है हिबा करना, और आप समझते हैं कि मैं रखूं तो दिलदारी के लिए और तालीफ़ कल्ब के लिए जिसने कुर्बानियां दी हैं, और वो आपकी करीबी रिश्तेदार भी है। तो ये जो है, इनके साथ आपने निकाह की इजाजत दी। और इसमें बता दिया गया कि भाई इसमें आप मुतअद्दिद बीवियां आपकी होंगी, तो फिर आप चाहे यकसां ताल्लुक ना रख सकें, आप पर कोई इल्जाम नहीं। अगर एक बीवी को आप करीब रखना चाहें, एक को दूर रखना चाहें, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि फलां को करीब रखा, फलां को आपने भेज दिया, मतलब उसके घर में या जैसे कोई जरूरत हो तो। और दूसरी बात यह है कि इन खवातीन के अलावा जो हमने दायरे बता दिए, बाकी सब खवातीन हराम है आप पर, किसी से आप निकाह नहीं कर सकते। और एक और पॉइंट ये बताया कि इनसे जब एक मरतबा निकाह कर लेंगे ना, तो इनको तलाक नहीं दे सकते, इनको अलग करके कोई और बीवी लाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप।
सर, इस पे एक ये पॉइंट भी ऐड कर दीजिए कि आपको जंग में कितनी खवातीन आपके पास आई थी, कि लोंडियों का भी जिक्र मिलता है कि नबी पाक के पास लोंडियां भी थी। अगर
जी
ऐसा
वो मैं कर देता हूँ। ये
जी
जो कानून है ना, इसके अंदर ये कहा गया था कि जो जंगी कैदी खवातीन है उनसे तो आजाद करके निकाह करेंगे आप, लेकिन अगर सोसाइटी में जैसे लौंडियां गुलाम मौजूद हैं, पहले से मौजूद हैं, वो कोई जंग के तौर पर नहीं वजूद में आए, पहले से सोसाइटी में हैं, या जैसे मकौकस शाह मिस्र ने मारिया किप्तियां भेजी, उनको आप लौंडी के तौर पर रखना चाहें तो रख सकते हैं, इसकी आपको इजाजत दी गई थी। जाहिर है कि जब तक लौंडियों का मामला बिल्कुल खत्म नहीं हो गया, ये खुद एक टॉपिक है बड़ा, कि भी लौंडी गुलामों का मामला इस्लाम खत्म करना चाहता था, क्या उसने खत्म किया, उसने क्या तरीका इख्तियार किया, या उसने इसको कहा कि ठीक है ये ऐसे ही चलना चाहिए, ये एक पूरा चूंकि मौजू है, मैं उसको यहाँ समेट नहीं सकता, और 1 घंटा पूरा हो भी चुका है, चंद एक मिनट की बात बस रह गई है, लेकिन बहरहाल वो मारिया किप्तिया के बारे में बात कर दूंगा चंद मिनटों में इंशाल्लाह। अच्छा बहरहाल तो ये बता दिया गया कि इन 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 बीवियों को अलग करके ना, इनकी जगह कोई और लाना चाहे तो आप नहीं ला सकते, इनकी जगह पर नहीं ला सकते। अच्छा अब आपने ना इस कानून के तहत ये जो कानून अब दिया गया, 4 ख्वातीन से शादियां की, सईदा जवेरिया और सईदा सफिया रजी अल्लाह अन्हुमा, ये सरदारों की बेटियां थी, कबीलों के सरदार थे इनके वालिद, तो ये जंगी कैदी के तौर पर आप पर आई, आपके पास आई, और ये कमाल देखें, आई और उन्होंने कहा कि मेरा फिदिया इतना तय किया गया है और पैसे मेरे पास तो नहीं, मैं तो जंगी कैदी हूं, तो नबी सुन को कहती हैं कि आप मुझे दे दें पैसे ताकि मैं आपकी फौज को वो पेमेंट करके जो मेरा फिदिया है वो दे के तो अपने इलाके में जा सकूं। तो नबी सुन ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा ये दे देता हूँ, तुम अगर चाहो तो मेरे साथ निकाह कर सकती हो, मतलब उनको आजाद किया, और फिर उनकी आजाद मर्जी से कि भाई तुम करना चाहती हो निकाह तो कर लो, नहीं करना चाहती ना करो, वो तो तुम्हारी मर्जी होगी। तो उन्होंने निकाह पसंद किया, यानी कि नबी की शख्सियत जो वहां आला अखलाक पे फायज थी, आप एक खूबसूरत शख्सियत थे, आप एक मतलब है रवैये में इतना इंतहाई नर्म, और जो जो आपका रवैया था सच्चे आदमी, ईमानदार वफादार आदमी, तो कौन एक खातून अगर उसको मौका मिले तो वो निकाह से गुरेज करना चाहेगी। खैर बहरहाल सईदा जवेरिया ने भी शादी की आपसे, और सईदा सफिया को भी इसी तरह ही उन्हें कहा गया कि आप तुम अगर आजादी के बाद निकाह करना चाहो तो कर सकती है, तो उन्होंने भी निकाह करना पसंद किया, बल्कि वो तो कहती है मुझे ख्वाब आई थी कि मेरी गोद में चांद आ गिरा है, तो वो फिर उन्हें बताया गया कि ये चांद नबी सल्लम के साथ आपकी शादी होना जाए, यही इसकी ताबीर फिर सामने आई थी। अच्छा और ये जो है ظاہر ہے کہ ان خواتین کی جو جنگی قیدی ہیں نا, حضرت جویریہ اور صفیہ, ان کی عزت افزائی کے لیے ان کے ساتھ نکاح کیے گئے. اچھا, اس کے بعد دو نکاح اور ہوئے, سیدہ میمونہ تھی تو وہ جو تھی رضی اللہ عنہا, ان کے ساتھ شادی آپ نے کی, انہوں نے اپنا آپ ہبا کیا تھا آپ کو کہ میں اپنا ہبا کرنا چاہتی ہوں. یہ دشمن قبیلے کی ویسے تو رشتے داریاں قریب قریب تھیں, لیکن ان کا تعلق یعنی ان کا جو بہنوئی تھا نا وہ اس قبیلے کا آدمی تھا, ان کا بہنوئی اس قبیلے کا آدمی تھا جس قبیلے نے کبھی یعنی کہ چند سال پہلے مسلمانوں کے 70 حافظ قاریوں کو شہید کر دیا تھا دھوکے سے. تو یہ اس قبیلے اس قبیلے کا سردار تھا, ان کا بہنوئی جو تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انہوں نے ہبا کیا, ان سے نکاح کر لیا. اور ایک ام حبیبہ ابو سفیان جنہوں نے جنگ احد لڑی تھی آپ کے ساتھ اور بہت نقصان کا ذریعہ بنے تھے ابو سفیان, تو ان کی بیٹی ام حبیبہ جو تھی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, ہجرت کی تھی, حبشہ میں چلی گئی, وہاں شوہر جو تھا عیسائی ہو گیا, چھوڑ گیا, اکیلی رہ گئی وہاں پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف قلب کے لیے ان سے بھی نکاح کر لیا. یہ آپ کی یعنی کہ رشتے میں یوں سمجھیں کہ وہی فرسٹ کزن کی بیٹی تھی, فرسٹ کزن سے بھی ہو سکتی تھی نا, اس کی بیٹی سے بھی ہو سکتی تھی, تو یہ فرسٹ کزن کی بیٹی تھی, تو ان سے بھی آپ نے نکاح کی. یہ چار نکاح آپ کے اس طرح سے ہوئے ہیں, اور پچھلے میں نے بتا دیا کل 11 نکاح یہ بنتے ہیں. ان کے علاوہ جو ایک اور خاتون تھیں ماریا قبطی مکوکس شاہ مصر نے وہ تحفے میں بھیجی تھیں دو خواتین. ایک خاتون تو انہوں اپنے حسان بن ثابت کو دے دی کہ انہوں نے ان کے ساتھ انہیں بطور لونڈی رکھا یا نکاح کیا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور لونڈی رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو نکاح کا قانون دیا گیا تھا اس میں وہ بطور لونڈی تو رکھی جا سکتی تھی, ان سے آزاد کر کے ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. اس قانون میں نکاح تو ان تین جو میں نے کیٹیگری گنوا دی نا انہی سے کیا جا سکتا تھا, یہ بھر قانون کی ایک پابندی تھی تو آپ نے کیا. اور اس کے اندر ایک حکمت جو سمجھ آتی ہے کہ بھائی جب تک جو اسلام تدریج کے ساتھ لونڈیوں اور غلاموں کو ختم کرنے کی ایک تحریک چلائے ہوئے ہے تو اس کے اندر جب تک یہ ختم نہیں ہوتے نبی کیسا کوئی لونڈ کسی اگر کوئی لونڈی نبی کے پاس ہے تو وہ کیا نمونہ ہے کہ جو نبی سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی لونڈی رکھے گا تو اسے کس لیول پر رکھنا ہے, کیا اس نے سلوک کرنا ہے, کس طرح اسے عزت دینی ہے. اور اسی طرح کوئی غلام اگر ہے تو اسے غلام بھی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کے ساتھ کیا سلوک رکھنا ہے, کیسے ان کو اپنے بھائی سمجھنا جو مطلب ہے اپنے لیے سمجھتے ہو, جس طرح انسان اپنے آپ کو اس طرح ان کو سمجھو, اخلاقی رویے ان کے ساتھ کیا رکھنے ہیں. اس میں بھی آپ نمونہ تھے ان کے لیے. تو آپ نے ایسا نہیں ہوا, خدا نے بھی ایسا نہیں کہا کہ تم ایک دم سے لونڈی غلاموں کو نکال دو, نہیں, وہ ایک تدریج کے ساتھ ہی نکلنے بہتر تھے. اس میں ایک نقطہ ہے کہ کیوں تدریج کا کہا اسلام نے, اس لیے کہا کہ جو ہے نا یعنی کہ غلامی یہ دماغ کا ایک خناس تھی. غلامی کیا چیز تھی؟ دماغوں میں گھسی ہوئی ایک چیز تھی, اور یہ اتنی زیادہ گھسی ہوئی تھی کہ جو غلام تھے نا وہ بھی یہ تمنا کرتے تھے کہ کوئی انسان ہمارا غلام, یعنی وہ یہ نہیں تھے کہ نہیں بھائی ہم تو غلام ہو گئے, اللہ کرے کوئی غلام نہ ہو کسی کا, کوئی نہ بننا, نہیں, وہ غلامی رائج تھی. وہ غلام پکڑے جاتے تھے, وہ ظاہر ہے کہ روتے پیٹتے ہوں گے لیکن پھر ایڈجسٹ کر کے زندگی سے, پھر ان کی خواہش ہوتی تھی ہمیں بھی کوئی غلام مل جائے ہم ان سے مدد لے لیں. تو اس کلچر سے دماغوں سے غلامی نکالنا پہلے ضروری تھا, پھر غلامی کا ختم ہونا واقعی ختم ہونا تھا. جس طرح ختم اس وقت ہوئی ہے نا اس سے دماغوں میں غلامی نہیں نکلی. انسان غلام پسند ہے اور وہ قوموں کو غلام بناتا ہے. بڑی بڑی قومیں طاقتور قومیں دوسری قوموں کو گردن پہ سکنجے گاڑتی ہیں, معاشی طور پر انہیں قابو کرتی ہیں اور وہی مطلب ان کو کوئی حیثیت نہیں دے رہی ہوتی, وہی فرق ہوتا ہے. تو دماغ کے اندر نا انسان ایسا نہیں, امریکہ میں دیکھ لیں, آپ دنیا کے اور ملکوں میں دیکھ لیں تو طبقاتی فرق یا مختلف پہلوؤں سے کالے اور گورے کا فرق بالکل اسی طرح چل رہا ہے. دماغوں کے اندر غلامی जो है मामला घुसा हुआ है, रंग बदल गए, अंदाज बदल गए, उस तरह यानी सेल परचेज नहीं होती बंदे की, लेकिन काबू किए जाते हैं लोग। मतलब जब एक जागीरदार जो है वो अपने मुजारे को मतलब उसकी सारी फसल ले जाते हैं और बहुत थोड़ा उसको देते हैं, उसके लिए उसे बांध कर रखता है, उसके यहाँ तालीम का निज़ाम नहीं आगे पैदा होने देता कि इसकी औलाद जवान हो के कहीं मुलाजमतों में ना निकल जाए। तो ये गुलामी ही तो है दिमागों के अंदर। खैर ये टॉपिक एक पूरा अलग है, इस पर अगर कोई मौका हो तो इंशाल्लाह बात करेंगे। मैंने ये बयान कर दिया कि इस तरह से थी। और एक सवाल जो आपने और किया था वो मारिया किप्तिया के वाले से, मुझे अब बताएं कि मेरे पास कुछ टाइम और है कि मैं उनके पॉइंट को वादे कर सकूं।
सर मुझे आप इसको बयान कर सकते हैं तो सर आप कर दीजिए।
मैं बयान कर देता हूँ जी। वो जो सूरह तहरीम में ना के नबी सों को कहा गया है सूरह तहरीम के शुरू में कि आप अपनी बीवियों की रजामंदी के लिए अपने ऊपर एक हलाल चीज को हराम क्यों कर लेती हैं, ये कहा गया। यानी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आपने कसम भी खाई है तो कसम को आप तो तोड़ दें, कसम खोल दें, क्योंकि कसम गलती से अगर आदमी खा ले तो उसको कसम खत्म कर देनी चाहिए। ये भी हमें तालीम दी गई कि इंसान से गलती हो जाती है कि वो एक अच्छे काम अच्छा काम ना करने की कसम खा लेता है, तो उसे कहा गया नहीं अच्छा काम ना करने की कसम अगर खाई ना तो ये कसम ऐसी है कि इससे तुम रोजे रखो 3 या 10 मस्किनों को खाना खिलाओ और तुम्हारी कसम ओके और तुम अच्छे काम की तरफ बढ़ो। जो अब ये कौन सी चीज थी जो नबी ने अपने ऊपर हराम कर ली थी, इसके बारे में 2 तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत ये मिलती है कि मारिया किप्तिया के बारे में आपने कह दिया था कि मैंने इनको अपने ऊपर हराम कर लिया, मैं कभी इनके पास नहीं जाऊंगा, ये मेरी लौंडी है और मेरे लिए इनसे मुकारबत जायज है, जायज थी या जायज है, अब मैं इसको अपने ऊपर नाजायज बनाता हूँ, ये कह दिया आपने। क्योंकि वो बात तो आप लोगों को मालूम ही है कि जब तक लौंडी गुलामों का जमाना था उस वक्त तक शरीयत ने जो लौंडी का मालिक होता था उसके लिए इस चीज को जायज करार दिया था कि वो लौंडी के साथ अजवाजी ताल्लुक रख सकता है, मियां बीवी वाला ताल्लुक रख सकता है, क्योंकि वो उसकी मलकियत है। बीवी मलकियत नहीं होती, बीवी तो वादे में होती है, एग्रीमेंट में होती है। तो एग्रीमेंट का मामला तो एक ऐसा बराबर का होता है जो तोड़ा भी जा सकता है, तलाक भी हो सकती है। यानी बीवी कहे मैं खुला लेना चाहती हूँ तो छोड़ के जा सकती है, लेकिन गुलामी में तो नहीं होता, मलकियत होती है। तो फिर मालिक को इख्तियार दिया था कि भाई तुम खुद सिर्फ तुम, ऐसा नहीं कि वो आवारगी का कोई पहलू नहीं कि भाई तुम भी इसके शोहर का पहलू और कोई और भी नहीं, नहीं इस तरह नहीं। अगर उसकी लौंडी की शादी होगी मालिक के लिए हराम हो गई, अगर लौंडी की शादी किसी गुलाम से हो गई या किसी आजाद बंदे से हो गई तो अब वो लौंडी अपने मालिक के लिए हराम हो जाती थी, ये शरीयत का कानून है। तो मालिक के लिए कब जायज है, जब उसका कोई शोहर नहीं है मालिक की मलकियत में। तो मारिया किप्तिया का मामला ये हुआ कि उन्हें वो आता है कि रिवायत में कि हजरत हफ्सा के हाँ एक दफा हजरत हफ्सा तो हजरत उमर से मिलने गई थी और वापस आई तो उन्होंने देखा कि मारिया किप्तिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई हैं तखलीय की हालत में। अब तखलीय की हालत में है, इसे कोई अगर बयान करना चाहे तो जैसे भी बयान करना चाहे कर देता है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बहरहाल ये रिवायत आती है और एक और रिवायत आती है नहीं नहीं मारिया किप्तिया का तो ये मामला ही नहीं था, वो मामला तो जो चीज़ हराम की थी वो तो शहद था। नबीम जो थे वो अपनी जो थी बीवी उनकी गालिबन जैनब नाम था, जैनब बिनते जहश था नाम, उनके पास वो जाते थे तो उनके यहाँ शहद आता था, तो शहद आपको अच्छा लगता था, आप शहद खा लेते थे। तो फिर जब अपने किसी दूसरी बीवी के पास जाते तो वो मतलब है उन्हें नागवार हुआ कि आप मेरे पास आज मेरी बारी थी तो मेरे पास आने से पहले दूसरी बीवी के पास क्यों गए हैं, क्यों मिले हैं उससे। जैसे आदमी मुलाकात के लिए चला गया ना कोई घंटे 2 घंटे के लिए या कोई 10-15 मिनट के लिए, तो उस पर उन्होंने कहा एक बात की कि आप के मुंह से ना शहद की बू आ रही है, वो खास मगाफिर फूल की बू एक पैदा हो जाती थी वहां के शहद में, तो उसकी बू आ रही है, और ये सच नहीं थी बात, ऐसा नहीं कि वो वाकई बू आ रही थी। तो नरेश ने कहा कि मैं फिर शहद नहीं खाऊंगा, मैं अपने लिए हराम कर लेता हूँ। तो वो गलती गया कि जिस पर अल्लाह ने टोका कि नहीं हराम करार ना दो, इससे उम्मत में हराम हो जाएगा शहद, तो उस इस पर टोका था। अब ये दो रिवायतें हैं, ये दो रिवायतों में पहली रिवायत जो है वो उसकी अक्सर सनदें ज़ईफ हैं, बाद सनदें ऐसी हैं कि जो ज़ईफ तो उनको नहीं कहा जा सकता लेकिन काबिले कबूल बहरहाल नहीं रही। कुछ हमारे मुफस्सरीन ने उनको लिख दिया, और जबकि ज्यादातर उलमा ने कहा कि नहीं, वाक्या जो हुआ था वो शहद की हुरमत का वाक्या हुआ था, ना कि मारिया किप्तिया का। मारिया किप्तिया वाली बात ऐसे फैल गई है या उस जमाने में किसी ने बयान कर दी है, और वो इतनी मुस्तनद बात नहीं है। जो बात मुस्तनद है वो शहद वाला वाक्या है। अब इसका जो है ना, ये चीज अगर आप देखना चाहें तो तफहीम में इसको ना सूरह तहरीम की इसी पहली आयतों की के तहत देख सकते हैं कि उसमें यानी कि आपको बाकायदा ये यानी कि उलमा ने इसको कहा है, और किसी एक आलिम ने नहीं, उन्होंने कहा है कि पहला किस्सा नाकाबिले एतमाद है, और खुद इमाम नसाई जिनकी किताब में इसका जिक्र आता है कि वो मारिया किप्तिया का नाम जिसमें आता है जिमनन, तो उन्होंने भी तफसीर में कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, तफसीर में ये ऐसा नहीं कि ये हराम होने वाली खातून मारिया नहीं, उन्होंने भी कहा है, जिनकी बिना पे लोग बात उठाते हैं ना उनको, उनकी खुद ये राय नहीं है, उन उस इमाम की राय, इमाम नसाई की भी राय नहीं है। इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने कहा है कि नहीं ये नहीं, हजरत आयशा ने जो रिवायत की है वो शहद वाले मामले की रिवायत की है कि शहद हराम किया गया था और वो फिर आपने उसके लिए कसम जो थी वो खोली थी। अब इस पे मजीद तहकीक आप करना चाहिए कर सकते हैं, ये चीजें आपको तफहीमुल कुरान में बिल्कुल मिल जाएंगी और आप तफसील देख सकते हैं। यहाँ मैं अपने लेक्चर को खत्म करता हूँ, अब कोई सवाल वगैरह अगर जहन में हो तो आप कर सकते हैं जी इंशाल्लाह।
सर, आपने बहुत वजाहत से कवर कर दिया, हमारे बाकी सवाल भी इसमें हो गए हैं कवर। तो एक तो सर, जब आप हजरत आयशा की उम्र की बात कर रहे थे तो यहाँ से एक सवाल आया, तो उसका हवाला दे दें हमें सर, अगर अभी मुमकिन है तो ठीक है, तो नहीं बाद में आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में कर दूंगी, तो वो हवाला मिल जाएगा।
जी नहीं, आप ऐसे करें कि आप उम्रे आयशा ये आप लिखें नेट पर, तो आपको नीचे कई किताबों का हवाला मिल जाएगा, यानी हजरत आयशा रजी अल्लाह की उम्र के हवाले से इसी उनवान के ना किताबें लिखी गई हैं, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, करके पढ़ सकते हैं, और उम्रे आयशा के पहलू से ना आपको मिल जाएंगी। खुद गामदी साहब की जो किताब है मुकामात, जो किताब है गामदी साहब की, उसमें आप 389 पेज पर देख सकते हैं सईदा आयशा की उम्र के बारे में, ये तहकीक किफायत करेगी। लेकिन आप उम्रे आयशा लिखें नेट पर तो आपको उसके तहत किताबों की लिस्ट एक मिल जाएगी, या जो भी दो चार किताबें वहां पर इस हवाले से उन्होंने दी अपलोड की होंगी ना वो नजर आ जाएंगी। और मार्केट से भी लेना चाहें तो उम्र आयशा के हवाले से ना दो तीन तहकीकात हैं, कोई एक ही नहीं है।
सर, मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद श्रोता की तरफ से एक दो सवाल है, वो लेकर हम फिर इख्तिताम की तरफ चलते हैं। सर, हमारे मुआशरे में जो है हज़रत आयशा की जो है नबी पाक की के साथ शादी को एक सिंबल बना दिया गया, यानी कि एक सुन्नत रसूल की तरह उसको बयान करते हैं, जबकि नबी पाक की जो पहली शादी है उसको कोई भी नहीं ऊपर उठाता या उस पर कोई फोकस नहीं करता। सर, इसकी क्या वजह है कि इस्लाम का एक रुकन बना दिया कि कम सिन उम्र से अगर लड़की से शादी करनी है तो ये सुन्नत रसूल है।
नहीं, वो तो देखें उससे तो यानी कि तो बात ही बड़ी कमजोर सी बात है। सुन्नत रसूल अगर आप इस तरह कहते हैं, सुन्नत रसूल का लफ्ज असल में यूं तो नहीं इस्तेमाल हो सकता, हम तो सुन्नत जारी करदा दीन को कहते हैं, लेकिन सुन्नत का अगर बिलफर्ज कोई आदमी कहता है कि नहीं इस तरह मैं इसको समझता हूँ, तो इसका मतलब है कि 40 से 25 साल के नौजवान के लिए 40 साल की उम्र से, 50 साल के आदमी के लिए 50 साल की उम्र की औरत से शादी करना ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। और छोटी उम्र जैसे मैंने कहा कि 19 साल की उम्र से, ये भी ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं होगा। सुन्नत का लफ्ज तो हम नहीं बोलेंगे, हम तो कहेंगे नबी ने मुख्तलिफ उम्र की औरतों से शादी की है तो ठीक है, ये जायज है, जायज कहेंगे इसको हम।
ठीक
और ये जहन में वाजे रहे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नबी ने किसी नाबालिग लड़की से शादी की है, इसके कोई पॉइंट ही नहीं। यानी रुखसती नाबालिग से तो हराम है। हाँ निकाह जो है ना वो हो सकता है, वो उसकी बाल का जरूरत होती है, ये मतलब है। बाज बड़े उलमा जो हैं उन्होंने इसको बयान इस तरह से किया, मैं वही उनके अल्फाज ही को बयान कर देता हूँ कि बाज का सूरत हाल कबीले की सूरत हाल या किसी खानदान में ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि अगर हमने जल्दी से एक लड़की जिसकी उम्र अभी शादी की नहीं हुई, फर्ज कीजिए 8 साल उम्र है, 10 साल उम्र है, तो उसको किसी से मंसूब ना किया या किसी के साथ उसका निकाह ना कर दिया, तो कोई और आदमी हम पर, कोई चौधरी, कोई जागीरदार, कोई वैसे हमारी फैमिली का कोई ऐसा आदमी जो जरा बड़ी भयानक शख्सियत रखता हो, हम पर दबाव डालेगा और हमारी लड़की ले जाएगा। वो हम मजबूर हैं, हम कर नहीं सकेंगे। कोई गरीब आदमी या कोई कमजोर आदमी जो है तो उसका फिर क्या हल करते हैं कि जी हमने इसका निकाह उससे करा दिया, बस कर दिए, ये गवाह हो गए ये निकाह। लेकिन रुखसती वो नहीं होगी, वो तो जब बालिग होगी तब होगी। तो नाबालिग का निकाह हो सकता है, ये बात शरण दुरुस्त है, लेकिन रुखसती नहीं हो सकती, शौहर के पास वो जाएगी तब जब बालिग होगी।
अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम जी।
सर मेरा क्वेश्चन जो शुरू में आपने जो दलाइल दिए ना इसके मुतल्लिक के मर्द के लिए जो बताया जा रहा है कि वो दूसरी तीसरी और चौथी शादी उसकी रीजनिंग जो बताई जाती है और नॉर्मली यही रीजनिंग बताई जाती है आजकल के दौर में अगर आप उसको गौर से देखें तो कोई भी ऐसा रीजन अदल के मुताबिक नहीं लगता कि अगर अदल के मुताबिक ये रीजन हो तो ये सारी रीजनिंग औरत के लिए भी हो सकती है। मतलब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकती है, मर्द जो है वो हो सकता है कि वो उस काबिल ना हो,
बिल्कुल सही
औलाद
है,
जहां तक औलाद की बात
बिल्कुल।
है।
नहीं नहीं आप आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें बहस नहीं। आप मुझे बात बताएं कि आपको इस पर तो कोई एतराज नहीं है कि एक मर्द के लिए तो ज्यादा बीवियां मुमकिन है या रखना ऐब नहीं है, लेकिन एक औरत के लिए ज्यादा शौहर का होना ऐब है। क्या आप इस बात को सही समझते हैं?
क्योंकि हम इसी तरह बड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली वो हमें
नहीं,
एक चीज बिल्कुल
आप
इसी
इसको
तरह
ना
समझ।
लें ना, आप एक इल्मी एतबार से बात करें ना कि
जी
एक आदमी
ठीक है,
कहेगा नहीं
नेचुरली
भाई,
भी आप
जो
ये कह
मर्द के
सकते हैं।
लिए वही औरत के लिए। एक आदमी ये कह सकता है ना, जो मर्द के लिए वही औरत के लिए, तो इसका मर्द अगर 4 शादियां कर सकता है तो औरत भी 4 मर्द रख सकती है, और अगर मर्द 2 शादियां कर सकता है तो औरत भी 2 कर सकती है। बराबरी तो तब होगी, बराबरी तो इसके बगैर नहीं होगी। तो अगर आप इस पर यानी कि सोच समझ कर पूरी चीजों को देख कर, खानदान कैसे बनेगा और घर कैसे बसेगा 4 मर्द एक औरत के साथ जब रह रहे हैं, और चारों देखिए मर्द का एक डोमिनेट करने का एक है ना, उसका वो लीड करता है अपने घर को, अपनी बीवी बच्चों को लीड करता है, तो 4 अफराद लीड करेंगे एक औरत को और उससे होने वाली औलाद को, क्या ये बात 4 कह लें 3 कह लें 2 कह लें तो क्या ये कोई सेटिंग बनती है?
जी मैं ये नहीं कह रहा कि उनको इस तरह बनता है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता। तो दूसरी तरफ भी बड़ा मुश्किल है, मतलब अगर एक मर्द भी जैसे आप अगर माशरे में सोसाइटी में देखें भी जिनकी दो दो तीन तीन है वहां पे आपको प्रॉब्लम ही नजर आएगी।
हाँ
कहने का
ठीक
मकसद
है,
ये कि
ना ना
जब
ओहो
कुरान में आएगा
नहीं
तो
नहीं
एक ही शायद
100% इत्तफाक जो आप कह रहे हैं इससे 100% इत्तफाक। प्रॉब्लम तो नहीं खत्म होते, ये बात दुरुस्त है, और दुनिया प्रॉब्लम खत्म होने के लिए बनाई भी नहीं अल्लाह ताला ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम करदा मुआशरे में प्रॉब्लम खत्म हो गए थे, जंगे जमल हो गई, जंगे सिफीन हो गई, और इसके अलावा साहबा के आपस में बहसें हुई, मतलब ये इख्तलाफात हुए, खिलाफत के हवाले से बहसें चली कुछ ही अरसे बाद। तो ये दुनिया आजमाइश है ना, तो इसने ये तो खुदा का तयशुदा मामला है कि आजमाइश खत्म नहीं होनी, हालात बदलेंगे। नबी का जमाना बहुत अच्छा था, उस जमाने में भी अंसार और महाजरीन के आपस में मतलब एक भड़कने लगी बात, लेकिन नबी ने फौरन उसको ठंडा कर दिया। ये बात तो अलग है, लेकिन वो भड़कने लगे, गुनाह हुए सहाबा के राम से, जिना का वाकया भी हुआ, और इसके अलावा भी मतलब है वो एक तरह की जासूसी कर दी। एक साहबी ने, हालांकि बदरी साहबी थे वो, लेकिन गलती होगी, कोताहियां होगी। तो ये तो आप ना कहें कि इस दुनिया में अदल कायम सेट, नहीं ये नहीं होता, ये नहीं होना। अदल देखें कैसे हो सकता है, आप निकाह करते हैं भाई, बेहतरीन जो लड़की है वो हमने अपने बेटे के लिए चुनी है, तो क्या वो लाजमन बेहतरीन हुआ करती है? नहीं, कभी हो जाता है। और अब मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा शौहर मुंतखब किया है, होता है कोई इस तरह? इस दुनिया में नहीं ऐसा होता, इस दुनिया में अरूज जवाल है। आदमी जवान होता है, बड़ा खूबसूरत होता है, डेढ़ उम्र बिगड़ गया उसका वो खूबसूरती, बुढ़ापा, अब वो देखना मुश्किल हो गया, उसकी राल टपक रही है, अपना आप संभाला नहीं जा रहा, दीवारों का सहारा लेके चल रहा है बंदा, या हाथ में पकड़ी हुई है सहारे के लिए वो छड़ी पकड़ी हुई है। ये दुनिया आजमाइश के लिए, इसको इधर से ना देखें, मसलों के हल के जाविये से देखें कि भाई मसला कुछ हल होता है ना। यकीनन एक बीवी के ऊपर दूसरी बीवी जब आती है, पहली को तकलीफ होती है, ये उसकी आजमाइश है, तकलीफ होती है। दूसरी पर अगर कोई तीसरी लाता है, मैं कहता हूँ जन्मन वजू से भी लाए, तकलीफ होगी। हजरत आयशा को दूसरी बीवियों की तरफ से वो खाना आ गया एक दफा ना, कोई चीज, हजरत आयशा ने वो बर्तन ही तोड़ दिया, लकड़ी का बर्तन था कोई, तो नबी सन ने वो बर्तन को जोड़ा पकाया था, मतलब जिस तरह भी उस जमाने में जोड़ा जाता होगा, उसको करके भेजा, प्यार से समझाया। तो वो एक एक मेरे तरफ है नबी सन, तो दूसरी बीवी ने क्यों भेजा इस मौके पे? तो ये कमी कोताही इंसान में तो साफ है कि है, और इसमें इसी में बुलंदी भी होती है। मैं इसको इस तरह से समझता हूं कि देखें, झगड़े हम जब हम नौजवान थे, तो उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ कि हम नौजवानों में भी झगड़े होते हैं, तो हमारे माँ बाप में भी झगड़े होते हैं, हाँ होते हैं यार, वो तो बड़े समझदार लोग हैं, हमें नसीहत करते हैं, ठीक बात है, उनके झगड़े हमारी जैसी छोटी बातों पर नहीं होते, वो कोई बड़ा पहलू होता है तो हो जाते हैं झगड़े। इस तरह के झगड़े साहबा में भी हुए, झगड़े का लफ्ज हम नहीं बोलते, लेकिन बहरल इख्तलाफात का लफ्ज बोल लें, हुए हैं।
अगर इसी के साथ थोड़ा सा ऐड करूं तो सर, हमारे उलमा ने जब ये फोकस किया है, तो ये फोकस मेरा हमेशा इस बात पे है कि चार शादियों की इजाजत है या चार शादियों तक रोक का। फोकस ये क्यों नहीं हुआ जो कुरान खुद कह रहा है कि एक करो, मतलब उसने पसंदीदा अमल एक का ही बोला है, दो दो या तीन तीन या चार के बाद
फोकस नहीं किया। नहीं, ये जो बात है ना, देखें ठीक है, इंसान उस बात को जो खुदा ने कही है कैसे बयान करता है, कैसे लेता है, तो दुरुस्त बात है कि कोई कोई आदमी होता है जो सही तरीके से लेता है, बहुत से लोग गलत तरीके से लेते हैं, नाजायज तरीके से लेते हैं, वो अपनी अपनी ख्वाहिश नफ्स को की दलील बनाते हैं, उसको अपना मसला और होता है। मेरे पास एक मौलवी साहब आए, वो प्रॉपर्टी डीलर भी थे और मस्जिद के इमाम भी थे, तो उन्होंने कहते हैं कि मैंने दो शादियां की, तो दूसरी बीवी मैंने ना बड़ी हमदर्दी के जज्बे से की है और बड़ी तरस खा कर की है। ठीक है, कोई वो तलाक याफ्ता नौजवान लड़की थी, तो मौलवी साहब की अपनी उम्र को 45 साल होगी या 50 साल होगी मेरा ख्याल है, तो उन्होंने की। तो मैंने बात नहीं की कि ये जो आपने कहा कि मैंने तरस खा कर की और मैंने ये की है, क्या ये वजह है? और वो तो अल्लाह जानता है क्या वजह, बंदा बयान करते इस तरह।
जी,
लेकिन तरस खा के भी करने के पहलू होते हैं, वो कोई कोई खुश नसीब होता है जिसको ये वाकई सहारा देना मिलता है। लेकिन वो भी सहारा जब देते तो मसले तो घर में पैदा होते हैं, उससे तो इनकार नहीं। एक बड़ी नेक नियति से एक अच्छे आदमी, अच्छे की क्या मिसाल देने, अभी नबी संघ की बात हम कर रहे थे, तो आपने जो मुतअद्दिद निकाह किए अपने जज्बे से किए, अपने वो कुरान खुदा की रहनुमाई में वो चीजें सारी कानून है, और आप नबी अल्लाह का नबी उस पर अमल कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं ना, तो वहां भी मसले पैदा हुए, उनकी बीवियों में भी मसले पैदा हुए। हजरत अफसा और हजरत आयशा की दोस्ती थी, और क्या बाकी हजरत जो सफिया थी उनके साथ थोड़ी सी एक टेंशन, अटेंशन का लफ्ज बोलें या कोई लफ्जों का इंतखाब में जरा मैं माजरत खा हूँ, मतलब है थोड़ा सा ना ऐसा कि बाहमी खुशगवारी नहीं नजर आती। उनको यहूदन कह दिए क्योंकि वो यहूदी थी और मुसलमान हुई थी। हजरत सफिया यहूदी की बेटी थी, यहूदी सरदार की बेटी थी, तो मुसलमान हो गई थी, लेकिन वो उन्होंने यहूदन कहा। तो ठीक है, मतलब है सेम ऑफ कर सकते हैं, बताएं।
बहुत
थैंक यू सर।
इनायत आपकी, आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह हम जल्द ही नए मौजू के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी सबको। अल्लाह हाफिज़ सर।
अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज जी।
अल्लाह।